पिछले अध्याय में आपने देखा कि मेहरा खानदान जयपुर पहुंच गया है और अयान जोया के ख्यालों में खोया रहता है और उसे तलाक लेने के फैसले पर पछतावा होता है। मेहरा फैमिली को कमरे दिए जाते हैं। वेदांत को होटल के पीछे लॉन में मानवी और एक बच्ची दिखती हैं, जिससे वो हैरान हो जाता है। मानवी को देखने लड़का आता है, पर वो उससे शादी नहीं करना चाहती और घर छोड़कर भागने का फैसला करती है। अब वेद को मानवी बैग छुपाते हुए दिखती है। वेद मानवी से बात करना चाहता है और उससे पूछता है कि वो क्या छुपा रही है। मानवी की मामी उन्हें एक साथ देख लेती है और शोर मचाती है कि वे भाग रहे हैं। मामला पंचायत तक पहुंच जाता है। वेदांत को एक अनजान लड़की का फोन आता है जो उससे मिलने की बात करती है। माया उस लड़की को वेद से दोस्ती करने और उसके कहे अनुसार काम करने के लिए कहती है। वेदांत वेद को बर्बाद करने की योजना बनाता है। वेद इन सब से बेखबर बच्ची की मुस्कान में खोया हुआ है। नाउ नेक्स्ट। पूरी मेहरा फैमिली समय पर नीचे आ चुकी थी। सब लोग नहा धोकर ताज़ा कपड़ों में तैयार थे। माहौल में एक अलग सी रौनक थी। कहीं हल्की सी हंसी, कहीं धीमी धीमी बातें और बीच बीच में होटल स्टाफ की भागदौड़। लाइट्स की पीली रोशनी पूरे लॉन को एक नर्म चमक दे रही थी। लॉन में सजी हुई महफिल मानो किसी शाही समारोह से कम नहीं लग रही थी। पूरा होटल सुनहरी रोशनी में नहा रहा था। मुख्य दरवाजे से लेकर लॉन तक फूलों की झालरें, रंग बिरंगी लाइट्स और पेपर लैंटर्न टंगे थे, जिनकी हल्की हल्की चमक शाम की ठंडी हवा में झूल रही थी। टेबल्स पर ताज़े गुलाब और लिली के सेंटरपीस रखे थे। मोमबत्तियों की झिलमिलाहट वातावरण में एक नर्म सी गर्माहट भर रही थी। दूर कोने में लाइव म्यूजिक की धीमी धुन बज रही थी और हवा में मोगरे की मीठी खुशबू तैर रही थी। हर तरफ सजीव रंग और चमक दमक थी, जिससे लॉन मानो किसी सपनों की दुनिया में बदल गया था। वहीं पर शेखावत फैमिली और उनके रिश्तेदार भी मौजूद थे। कुछ मेहरा फैमिली के रिश्तेदार अगले दिन आने वाले थे, इसलिए इस वक्त ज्यादातर होटल फैमिली के लिए ही बुक था। किया और सिया भी बाकी फैमिली के साथ नीचे आईं, लेकिन थोड़ी ही देर में एक साइड पर खड़े होकर आपस में बातें करने लगीं। तुमने उसे देखा? किया ने धीमे स्वर में पूछा। किसे? सिया ने भौहें चढ़ाते हुए जवाब दिया। निम मुस्कुराकर फुसफुसाया। वही जो अभी यहाँ से एक लड़का गया था, कितना हैंडसम था। सिया ने हल्की सी हंसी दबाते हुए कहा। मुझे किसी हैंडसम लड़के में कोई दिलचस्पी नहीं, और वैसे भी लड़कों में ऐसी क्या खास बात है, हमारे भाइयों से ज्यादा हैंडसम तो कोई नहीं। फिर वो मजाक में बोली, देखो वेद भैया, सबसे ज्यादा हैंडसम तो बड़े भाई ही लग रहे हैं। किया ने सिर हिलाते हुए कहा। हाँ मानती हूँ वेद भाई हैंडसम है, मगर वो तो भाई है ना। सिया ने उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए वेद की तरफ देखा। वो लॉन के उस हिस्से में था जहाँ पर खाना तैयार हो रहा था, थोड़ी दूरी पर खड़ा, हल्के पर्दों के पीछे से जैसे किसी को तलाश रहा हो। सिया ने पास जाकर पूछा, भाई आप किसे ढूंढ रहे हैं? वेद ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा और बोला, किसी को भी नहीं। सिया ने मुस्कुराकर चुटकी ली। अगर ढूंढ नहीं रहे तो उधर देख क्यों रहे हैं? वेद ने हल्का सा झूठ मिलाते हुए कहा। जब हम आए थे मैंने एक छोटी सी बच्ची को देखा था, काफी क्यूट थी, शायद उसी को देख रहा था। सिया ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। तो जो गेस्ट हैं वो तो इधर ही हैं, उधर तो शायद नहीं होगी, वेद ने धीमे स्वर में कहा। तुम्हारी बात भी सही है। असल में जैसे ही वेद लॉन में आया था उसकी नज़र पूरे हॉल में घूम चुकी थी। न बच्ची दिखी न मानवी, और यही बात उसे परेशान कर रही थी। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, जितनी शायद किसी लड़की या गर्लफ्रेंड को लेकर भी कभी नहीं हुई थी। धीरे धीरे गेस्ट आने लगे और मेहरा फैमिली से मिलते गए। बड़े बुजुर्ग बलवंत मेहरा से बातें करते और बीच बीच में उनके बड़े बेटे वेद के बारे में पूछते। बलवंत ने वेद को अपने पास बुला लिया, लेकिन उसकी नज़र अब भी इधर उधर किसी को तलाश रही थी। हॉल में मौजूद कई लड़कियों की निगाहें वेद पर थीं, लेकिन आज उसकी निगाहें किसी और पर थीं, सिर्फ उस छोटी बच्ची पर। थोड़ी देर बाद वेद ने अपनी प्लेट में खाना डाला और एक साइड टेबल पर जाकर बैठ गया, लेकिन खाना खाने से ज्यादा उसका ध्यान गेस्ट पर था। उसकी आंखें भीड़ में मानवी की तलाश कर रही थीं। वो सोच रहा था कि शायद मानवी से उस बच्ची के बारे में पूछ सके। उसी वक्त एक लड़की उसके पास आई, हाथ में प्लेट थी और चेहरे पर हल्की मुस्कान। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? उसने पूछा। वेद ने उसकी तरफ देखा, फिर हल्के से मुस्कुराया। बैठ जाइए, लड़की बैठते ही बोली। आपने मुझे पहचाना होगा? वेद ने कुछ पल सोचा। हाँ हम क्लब में मिले थे, है ना? लड़की ने जैसे गर्व से कहा। मुझे पता था कि आप मुझे पहचान लेंगे, मैं ऐसी थोड़ी हूँ कि कोई मुझे भूल जाए। वो उसके पास बैठकर खाना खाने लगी और बातें करने लगी। आपका कमरा कौन सा है? अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं रात को आपके पास आ जाऊँ, अकेले में मुझे डर लगता है। वेद को जवाब देता उससे पहले ही उसकी नज़र एकदम से उधर पड़ी। वो छोटी बच्ची, वो होटल की लॉबी से बाहर निकल रही थी। वेद ने एक पल के लिए मुस्कुराकर लड़की की ओर देखा, फिर तुरंत प्लेट मेज पर रखी और खड़ा हो गया। तेजी से उस दिशा में बढ़ा, लेकिन जैसे ही वो लॉबी में पहुंचा किसी ने उस बच्ची को अंदर से बुला लिया और वो फिर भीतर चली गई। वेद ने चारों तरफ नजर घुमाई पर वो कहीं नजर नहीं आई। वो कुछ पल वहीं खड़ा रहा, मन में हल्की सी झुंझलाहट और बेचैनी के साथ। उधर माया जो उसके साथ बैठने आई थी निराश होकर रह गई। उसका मन था कि वेद को खुद ही रात के लिए बुला ले, लेकिन वेद तो उसके पास बैठा भी नहीं था। बिना कुछ कहे वो उठकर चला गया था। वेद अब भी वहीं खड़ा था उस बच्ची को ढूंढने की कोशिश में। लॉबी और बार साइड, हलचल के बीच वेद जैसे ही लॉबी में दाखिल हुआ उसके कदम अपने आप धीमे हो गए। उसकी नजर बार बार चारों तरफ घूम रही थी। उस छोटी बच्ची को ढूंढने की बेचैनी अब उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। पीछे से दो परछाइयां उसकी तरफ बढ़ी, सुधांशु और दीपक। दोनों उसे चुपचाप कुछ सेकंड तक देखते रहे, फिर सुधांशु ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या बात है भाई, कोई गर्लफ्रेंड गुम हो गई है क्या? दीपक भी हंसते हुए बोला, सच में लॉबी में ऐसे चक्कर काट रहे हो जैसे कोई सीक्रेट मिशन पर हो। वेद ने हल्की मुस्कान दी लेकिन आंखों में वही तलाश बनी रही। ऐसा ही समझ लो, उसने आधे मन से जवाब दिया, फिर पूछा, तुम दोनों ने खाना खा लिया? सुधांशु ने कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा, असल में हम तो उस साइड से आ रहे हैं। वो रुककर बार की दिशा में देखने लगा जहाँ पीने पिलाने का इंतजाम है। हमने देखा कि आप वहाँ नहीं हो तो सोचा देखाएं। वेद ने हल्के से सिर हिलाया, बस यार आज मूड नहीं है पीने का। दीपक ने हैरानी जताई, कमाल है, आपका मूड नहीं है पीने का? हमें तो लगा था कि आप यहीं मिलेंगे। नहीं, मैं खाना खा चुका हूँ और ड्रिंक का मन नहीं। अगर तुम लोग पीना चाहते हो तो मैं बस कंपनी दे सकता हूँ। उसने जैसे ही तीनों बार साइड की तरफ लौट गए। बार एरिया होटल के खुले हिस्से में था, लेकिन ऊपर से सफेद कैनोपी और चारों तरफ फेरी लाइट्स ने उसे एक अलग ही अंदाज दे रखा था। मध्यम म्यूजिक, ग्लासों की खनक और बातचीत की धीमी गुनगुनाहट माहौल को हल्का फुल्का बना रही थी। वेद एक कोने की टेबल पर बैठ गया और सुधांशु और दीपक ने अपने लिए एक एक ड्रिंक ऑर्डर कर ली। तभी दूसरी तरफ से माया नजर आई। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, जैसे वो किसी खास पल का इंतजार कर रही हो। वेद को अकेले देख उसके मन में विचार बिजली की तरह कौंधा, यही मौका है, धीरे धीरे शुरू करना होगा। माया सीधे उनकी टेबल की ओर बढ़ी। आप लोग तो मेरे लिए भी एक पैक बना दीजिए, उसने मुस्कुराते हुए कहा। सवाल हवा में तैर रहा था, क्या माया सचमुच वेद को ड्रग्स दे पाएगी
या फिर वेद की बेचैनी उसे इस चाल से बचा लेगी? और क्या वेदांत अपनी योजना में सफल होगा? प्लीज मेरी सीरीज पर कमेंट करें, साथ में रेटिंग भी दें।